राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1991 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम।
नारायण 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 बोलो नारायण। भगवान ने सांसारिक सुख पाने के लिए कर्मों की रचना की है कि इसमें है तुम कर्म करो उसका फल भोगो, परंतु बात एक विलक्षण है कि सुख भोगने के लिए कर्म करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, ये एक अनिवार्य बात है। संसार के सुख भोगी को दुख भोगना पड़ता ही है परम सुख के, जैसे चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, हत्या करने वाले अब मन काम तो करते हैं अपनी मर्जी से, पर उसका कैद आदि दंड भोगते दूसरों की मर्जी से। ऐसे संसार का सुख भोग वो तो अपनी मर्जी से, और उसका दंड भोगना पड़ेगा बिना मर्जी के, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम्हारा जो विवेक है, एक हम तुम्हारे विवेक देते हैं, कर्मों की शक्ति दी उसके, तो ये बात हुई हम विवेक शक्ति दी, उसने सार असार नित्य अनित्य ग्राह्य त्याज्य ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, इन दो बात को समझते हो तो दो बात को समझ करके जो कर्तव्य वो करो और अकर्तव्य मत करो, और वो अपने लिए मत करो औरों के लिए करो, दूसरों का कैसे हित हो इसमें लग जाओ, क्योंकि अपने हित के लिए करने से तो अहित अपना होगा, अंत में दुख पड़ा पड़ेगा। तो अपने हित की, अपने सुख की, अपने आराम की, अपने मान की, अपने सत्कार की, अपनी बड़ाई की इच्छा न रख करके औरों को सुख कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, इस तरह से तुम करो। तो एक भगवान ने ये विवेक शक्ति दी, उस विवेक शक्ति से अपने स्वार्थ के लिए काम न करके दूसरों हित के लिए करो, ये विवेक शक्ति का उपयोग है। तो ये कर्म योग हो गया, ये दूसरी शक्ति भी नहीं, कर्मों से ऊंचा उठने के लिए, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए दिया। इससे भी आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो भगवान ने कृपा करके और विवेक का दूसरा रूप बताया। नित्य नित्य है वो विनाशी और विनाशी है, ऐसे उस विवेक के द्वारा देख करके विनाश चीज का त्याग करो। आपके संयोग माने वाला वियोग होने वाला है तो संयोग का तो वियोग होगा, पर वियोग का ही वियोग पहले कर लो। मानो हमें संयोग नहीं चाहिए, सुख से भी दुख होगा, दुख से भी दुख होगा, अब अनुकूलता से भी सुख होगा तो प्रतिकूल से दुख होगा, तो ये दो करना पड़ेगा। इनमें केवल दूसरों के हित के लिए करने से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तो ये कर्म योग दिया और दूसरा विवेक दिया, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, उसमें असार का अनित्य का त्याग करना सर्वथा। सर्वथा त्याग करोगे तो नित्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य स्वरूप आपका है, स्वतः सिद्ध है, जागृत में, स्वप्न में, स्वरूप में, स्वतः आप में वो तत्व है जिसका आप अनुभव करते हो। अनेक योनियों में जाते हो तो अनेक योनियों का अनुभव करने वाले तो आप तो एक ही रहते हो, अनेक अवस्थाओं का अनुभव करने वाले आप एक ही रहते हो, अवस्थाएं अनेक होती है, अनेक घटनाओं का अनुभव करने वाले आप एक रहते हो, घटनाएं अलग अलग होती है। ऐसे अनेक परिस्थितियों का अनुभव करने वाले आप एक रहते हो, परिस्थितियां अलग अलग होती है। ऐसे देश है, काल है, देश अलग अलग होते हैं, आप एक ही रहते हो। समय जागृत समय है, समय पहले होता, भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य काल है, ये सब काल है। ये काल बीतते आप एक ही रहते हो। पहले भविष्य होता है, भविष्य बाद वर्तमान होता है, वर्तमान के बाद भूत होता है, ऐसा आप जानते हो और मानते हो। तो काल से आप अलग हो, काल के जानने वाले में आप रहते हो, काल से अलग भी रहते ही हो। वर्तमान में भी अलग है, भूत से भी अलग है, भविष्य से भी अलग है, इनसे अलग आपका ज्ञान है। ये आप में बदलते है, आप नहीं बदलते हो। ऐसे वस्तुओं का भी बदलना परिवर्तन होता है, संयोग का वियोग होता है, वियोग का फिर संयोग किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, ऐसे सबका वियोग होता है। इनकी बातों को भी जानते हो, इन बातों का त्याग करो। ये त्याग करने के लिए भगवान ने दो उपाय बताए, कर्मयोग बताया, एक ज्ञान योग बताया। तो कर्मयोग दूसरों को हित के लिए करना कर्मयोग हो गया, और अपने हित कुछ नहीं चाहना किसी से भी, अपना तो केवल जड़ता से ऊंचा उठना है। विवेक के द्वारा जड़ चीज है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये हमें नहीं चाहिए। इससे ऊंचा उठने के लिए ज्ञान योग दिया। तो ज्ञान योग के द्वारा अपने स्वरूप को समझ कर लो और उसमें स्थित हो जाओ, तो इससे आफत मिट जाए। इससे भी विलक्षण चीज भगवान ने भक्ति योग दिया, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है, और हमें कोई मतलब नहीं है, अपने मुक्ति से भी मतलब नहीं। वो एक शांति मिलती है कर्म योग से, और शांति की भी इच्छा नहीं। ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो प्रभु ने योग दिया है, ये बिना स्वार्थ के दिया है, बिना मतलब के दिया है, केवल कृपा से दिया है। तो ये कृपा से ही दिया हुआ है, केवल ऐसा समझे कि कृपा से कैसे समझे। हमने कर्म किए, उन कर्मों का फल है, जो शुभ काम कही है उन शुभ कामों का फल हमारे को शुभ परिस्थिति प्रति परिस्थिति मिली है, वो तो हमारे कर्मों का फल है। तो गहरी बात थोड़ी समझ रही है, इसमें ध्यान देना। आपने शुभ काम किए, उसने आपके अनुकूल परिस्थिति मिली, पर शुभ काम पहले, शुभ और अशुभ दो का ज्ञान पहले है, शुभ कर्म पहले है, कर्म पहले नहीं है, पहले उसका ज्ञान पहले है, उसके बाद शुभ और अशुभ दो विभाग करके शुभ कर्म किए, सब अगर शुभ परिस्थिति मिली, तो शुभ कर्म का ज्ञान अब पहले कैसे हुआ कि वो हमने पहले शुभ कर्म किया था, तो आरंभ में शुभ काम किया उसका ज्ञान कैसे हुआ। तो ये मानना पड़ेगा वो ज्ञान किसी का दिया हुआ है, परमात्मा का है, वो ज्ञान अनादि है, शुभ कर्म अनादि नहीं है। कर्म तो आसादी होता है और उसका अपना शुभ और दुख के फल मिलता है। तो पहले ही पहले भगवान ने विवेक दिया है, तो विवेक दिया है, उस विवेक के द्वारा अपनी मुक्ति कर सकते हो, और विवेक के द्वारा कर्मयोग करके कल्याण प्राप्त, शांति प्राप्त कर सकते हो, उस विवेक के द्वारा हरेक की सेवा कर सकते हो, शुभ भोग कर सकते हो, शुभ कर्म कर सकते हो। ऐसा विवेक दिया है जिसने, वो विवेक का देने वाला एक परमात्मा है, उस तरफ आप ख्याल करो। विवेक को तो आपने पकड़ दिया, कर्मों को आपने पकड़ लिया, शुभ काम करेंगे अशुभ नहीं करेंगे ये पकड़ लिया, परंतु ये काम करने की शक्ति और सामर्थ्य और अवसर और विवेक किसने दिया, ये तो किसने दिया हुआ है ना। अपने हाथ की बात है तो आपने अविवेक को क्यों पकड़ा, वो भगवान का दिया हुआ। इस वास्ते आप विवेक और अविवेक दोनों को पकड़े जाते हो, अगर आपका खुद का विवेक होता तो अविवेक आप में रहता ही नहीं, परंतु दी हुई है परमात्मा की चीज उसको परमात्मा की न मानकर अपनी मान लेते हो, अपनी मान लेते तो सदुपयोग दोनों कर देते हो और भगवान की दी हुई मानते दुरुपयोग नहीं करते। तो ये बात सुनिए, भगवान की दी हुई शक्ति है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनकी दी हुई सामर्थ्य है, उनका दी हुई सामान्य है, उनकी दी हुई समझ है, ऐसे समझ करके केवल उनकी प्रसन्नता के लिए काम करो, केवल उनकी प्रसन्नता के सिवा अपने कुछ नहीं चाहिए। उन्हें देने तो देने में तो इतने उदारता से दिया है कि जिसका कोई पारावार नहीं है, और ऐसी उदारता दिया है, एक विलक्षण उदारता से दिया है। वो क्या विलक्षण है, कोई सहायता करता है तो अपना एहसान करता है, कहते मैंने तुम्हारा ये उपकार किया, पर भगवान ने सब कुछ दिया, इंद्रिया दी, अंतकरण दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, परंतु भगवान ने कहीं जनाया ही नहीं कि मैंने दिया है। वो कहते हमारा खुद का ही है, तब आप उल्टी कर क्यों चलते हैं, खुद का दिया हुआ होता खुद का ही तब तो आप उल्टे नहीं चलते, पर तो वो पता मेरी चीज है उसका दुरुपयोग करना आपने गलती कर दी, ये गलती करिए दुख भोगना पड़ता है। तो ये आपकी खुद की बुद्धि नहीं है, ये विवेक खुद का आपका नहीं है, ये दिया हुआ प्रभु का है। तो जिसने दिया है उसका एहसान मंद होना, उसको याद करना, उसी को प्रसन्न रखना और उसी को सुखी बनाना है, उनको आराम देना है, ऐसा भाव आप रखो तो आप भक्त हो जाओगे। तो भक्त होने से ये ठीक से बात है समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी फिर गलती नहीं करोगे, समझ में आएगी भगवान की कृपा से। कृपा का सहारा मानने से ठीक समझता है, जब तक कृपा का सहारा न माने अपना विवेक समझता है, तब तक ये दुरुपयोग सदुपयोग दोनों करता रहता है, और दुरुपयोग का फल दुख और सदुपयोग का फल सुख ऐसे पाता रहता है। पर भगवान की चीज समझता है, भगवान के लिए ही करता है, केवल उनको खुश करना ही अपना काम समझता है, अपनी कोई विचारी नहीं समझता, तो वो फिर परमेश्वर को प्राप्त हो, प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो योग और ज्ञान और भक्ति, ये भगवान का भजन, भगवान की शरणागति, ये सर्वोपरि चीज है। ये बात अभी है ना, हरिशरणम हरिशरणम, तो हरिशरण का हरि मेरे शरण है, आश्रित है, रक्षा करने वाले हैं, हमारी मदद करने वाले हैं, हमारे को परम प्रेम देने वाले हैं, सदा ही मुक्ति देने वाले प्रभु हमारे हैं, ऐसा विचार करके रहना है, ये है भक्ति। तो भक्ति की योग्यता और ये भी भगवान ने दिया हुआ है, तो भगवान की दी हुई वस्तु के द्वारा भगवान की सेवा करना। प्रश्न पूछा है कि हिमालय भगवान की प्राप्ति में कारण कैसे है। देखो, भगवान की दी हुई संपूर्ण चीजें कल्याण करने वाली है, उसमें गलती हो जाएगी अपनी मान लेता है। शरीर भगवान का दिया, मन बुद्धि भगवान दिए हुए, इंद्रियां भगवान की दी हुई, परिस्थिति भगवान की दी हुई, देश काल योग्यता विवेक भगवान का दिया हुआ, ये भगवान का ही एहसान मानकर भगवान अर्पण करो तो भगवान ने हिमालय नहीं मात्र दीदी चीन कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के सिवाय भगवान का और कोई कोई काम ही नहीं है। सूर्य स्वरूप होता न गया तो मान शांति मिलती थी, भगवान को सूर्य मानने शांति की प्राप्ति होता थी हो जाती है। सूर्य किसको कहते हैं, बिना कारण हित करने वाला सूर्य होता है, एक एक का उपकार करता है आपस में, वो मित्र होते हैं और कोई अपना विचार ही नहीं देखते, अपना सोचते ही नहीं, केवल उपकार ही उपकार करते रहते, हित ही करते रहते, सेवा ही करते रहते, सुखी पहुंचाते रहते हैं, तुम दुख पहुंचाओ मत पहुंचाओ, कुछ करो कुछ न करो, अपनी तरफ सेवा ही करते, सूर्य देता है। तो सूर्य सर्व होता ना, प्राणी मात्र के परम सूर्य परमात्मा ने जो हमें दिया है वो सबका सभी भगवान की अर्पण करो, भगवान का समझो और भगवान के लिए ही करो, तो वो सब का सब हिमालय नहीं, मात्र वस्तु आप कल्याण करने वाली हो जाएगी, क्योंकि कल्याण करने के लिए भगवान ने परिस्थिति दी है, वस्तु दी है, योग्यता दी है, भक्तियां दी है, जो कुछ दिया है सब आपके कल्याण के लिए ही दिया है। जो कुछ हमारे उस शक्ति मिली है, जो कुछ हमारे उस सामान मिला है, सामग्री मिली है, समझ मिली है, जो कुछ भी अपने को प्राप्त हुआ है वो केवल हमारे कल्याण के लिए ही भगवान ने दिया है। तो हिमालय भी भगवान ने दिया तो कल्याण के लिए, यहाँ निवास दिया तो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, गंगा जी को प्रकट करी तो हमारे भले के लिए, उनके देश उनको प्रकट हमारे भले के लिए, सज्जनों क्या बताओ, नरक बनाया वो भी हमारे भले के लिए ही बनाया है, हमारे कल्याण के लिए ही बनाया है, हमारे पापों का नाश करने के लिए ही बनाया है, वैकुंठ आदि वो हमारे कृपा के लिए बनाया है, ब्रह्म लोग आदि बनाए वो हमारे लिए ही बनाए, केवल हमारे पर कृपा करने के लिए ही बनाया है। अच्छी और मंदी परिस्थिति हमारे को भेजते हैं वो भी केवल हमारे कल्याण के लिए भेजते हैं। मंदी परिस्थिति है जिसमें आप उकसा जाते हैं, खराब परिस्थिति आती है तो वो क्यों आती है कि आप जो भूल करके गलती कर बैठते हैं उसका दंड होता है। तो अगर ये गलती नहीं करना ये समझाने के लिए भगवान भेजते हैं। तो एक हिमालय नहीं है, एक गंगा जी नहीं है, हमारी प्रत्येक परिस्थिति सुखदायी दुखदायी अथवा सुख मिले हुए अनिष्टम इष्टम विसंचित कर्मण फलम, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, विसंचित फल होता है, वो भी फल का विधान भगवान ही करते हैं। हम अच्छा मंदार मिश्रित कर्म करते रहते हैं उसका फल वैसा होता है। तो जो कुछ होता है भगवान कृष्ण केवल हमारे कल्याण के लिए, इसके सिवाय कोई मतलब ही नहीं है। हम सुख भोग में लग जाते हैं, स्वार्थ में लग जाते हैं और अनिष्ट करने लग जाते हैं, यहाँ से अनिष्ट होता है। अगर ये करना बंद कर दे तो बात ऐसी समझ में आती है कि कल्याण तो स्वतः संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक है, कल्याण के लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा, केवल केवल दुरुपयोग न करें, केवल शास्त्र से विरुद्ध न चले, केवल लौकिक मर्यादा से विपरीत न चले, भगवत और ऋषि मुनियों की आज्ञा से विरुद्ध न चले, उनके अनुसार चले तो कल्याण तो स्वतः हो जाएगा। स्वाभाविक ऋषि मुनियों की कृपा, भगवान की कृपा, जनता की कृपा, सबकी कृपा से कल्याण तो स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा, केवल इनका दुरुपयोग न करें। तो देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति जो कुछ मिला है उस केवल सबकी सेवा के लिए मिला है, ऐसे सब सेवा में लगा है। अपना काम तो केवल सेवा करने का है, वो भी निमित्त भगवान बनाते हैं हमारे को, शक्ति भी भगवान देते हैं, समझ भी भगवान देते हैं, सामग्री भी भगवान देते हैं और अवसर भी भगवान देते हैं, समय भी भगवान देते हैं। वो भगवान का भी वह समय अवसर, वो अवसर केवल भगवान के चरणों में लगा दे, निमित्त मात्र भविष्य में शासन। अर्जुन को कहते हैं कि माया हताश तुम जही, ये मेरे मारे हुए हैं, तू इन शत्रुओं को मार दे और निमित्त मात्र बिना विजय हो जाएगी। ऐसे संसार की संपूर्ण वस्तु नष्ट हुई हुई है, काल भगवान सब खा गए, सब खाई हुई है, कोई रहने वाली है नहीं, तो इसको दूर करना कि इनको पैदा करने की जरूरत नहीं है, इनसे ऊंचे उठ जाओ, इनमें साथ में रह नहीं सकते, ये बिल्कुल आपका खुद का अनुभव है। तो निमित्त मात्र एक बढ़ जाओ, इनमें आशुत न हो, इनमें फर्श नहीं, इनसे सुख ले नहीं, सुख इच्छा रखे नहीं और सबकी सेवा ही करता रहे, तो निमित्त मात्र बनने से कल्याण हो जाएगा। ये दुराचार का त्याग करना है, ये त्याग क्या ये है ही नहीं, नष्ट हुए हुए है, केवल तुम उपराम हो जाओ, इनसे अलग हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, इसमें फंसो मत, तो कल्याण सुते हो जाएगा, मुक्ति कल्याण भगवान का प्रेम शांति सब कुछ आप से आप मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो मिली हुई वस्तु का, मिले हुए अवसर का, मिले हुए समय का, मिली हुई सामग्री का, मिली हुई समझ का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करने में इससे इतनी जरूरत नहीं, जितना दुरुपयोग न करने की जरूरत है कि सदुपयोग होगा अथवा कुछ नहीं होगा तो सदुपयोग होगा, कुछ नहीं होगा तो ईश्वर परिस्थिति हो जाएगी और सदुपयोग करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इस बात से दुरुपयोग नहीं करना, एक बात निगाह रखनी है, जो अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो आपको समय मिला है, जो सामग्री मिली है, जो समझ मिली है, जो योग्यता मिली है, उसका दुरुपयोग न करके सबके हित में लगा दो तो ते प्राप्त मंत्री मामे में सर्वभूति तीरता प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। ये बात है,
ये तो सभी बात समझ में आ रही है जी, लेकिन ये नहीं आ रहा है समझ में कि हिमालय बहुत सहायक है।
हिमालय समझने जरूर नहीं, जितना समझ में आ जाए उतना आप करते रहो, फिर नहीं समझ में आए वो समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आया उतना न करने से अगर ये समझ नहीं बढ़ती, पहली सीढ़ी पर चलो, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चलते जाओ, अंतिम सीढ़ी पहुंच जाओगे और एक पहले ही बैठे हुए अंतिम सीढ़ी का विचार करोगे तो न तो अकल में आने की है न चढ़ने का होगा नहीं। जितना जितना समझ में आ गया उसमें गलती मत करो, ठीक करो, ठेट पहुंच जाओगे, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। अपने जान में गलती मत करो, ठीक से चलो, दो तीन सीढ़ी पर पैर रखेगा तो चढ़ना तो दूरा, खड़ा नहीं रह सकता, गिर पड़ेगा, और एक एक सीढ़ी चलते सुगमता ठेठ चढ़ जाएगा पूरा। ऐसे जितना समझ में आया है उसमें गलती मत करो, समझ में आया नहीं आया उसकी चिंता मत करो, समझ आ जाएगा, आपकी आवश्यकता देखकर भगवान समझ में आ जाएगी। बच्चा छोटा रोटी नहीं खा सकता तो भगवान पहले दूध पैदा कर देते हैं, इसमें से भगवान हमारे निगाह रखने वाले हैं, हमारे जो चाहिए वो चीज भगवान पैदा कर रहे हैं। जितना समझ में आया उसमें गलती मत करो, दुरुपयोग मत करो, ये बात है सर। नारायण 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 नारायण।